ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविश्रम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज एकादशी है और हर एकादशी में श्रील प्रभुपाद लीलामृत से हम पढ़ते हैं, तो आज भी पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत में जो अध्याय चल रहा है, अध्याय एक है जिसका नाम है बचपन। तो श्रील प्रभुपाद के बचपन की कई लीलाओं का वर्णन सत्स्वरूप दास गोस्वामी ने किया है। तो आप सब जानते होंगे सत्स्वरूप दास गोस्वामी श्रील प्रभुपाद के जो प्रमुख और सबसे पहले जो शिष्य है उनमें से एक है, और बहुत अधिक समय सत्स्वरूप दास गोस्वामी ने श्रील प्रभुपाद के साथ बिताया था उनके सेक्रेटरी के रूप में, और उन्होंने उनका प्रभुपाद के लिए बहुत अधिक अनुराग था। वो शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद के संग में रहा करते थे, कई प्रकार की सेवाएं करते थे, और फिर उन्होंने श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद जो इस्कॉन का GBC जो मंडल है, सारे सीनियर वैष्णवों ने सत्स्वरूप दास गोस्वामी को निवेदन किया। तो उनको कहा कि आप क्या करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन के ऊपर एक ग्रंथ लिखो। तो उन्होंने बहुत विस्तार रूप से प्रभुपाद के ऊपर ये चरित्र लिखा है, और इसको पढ़ने से ऐसे लगता है कि वह सत्स्वरूप दास गोस्वामी श्रील प्रभुपाद के सदैव साथी थे। जब आप पढ़ते हो तो लगेगा कि हर छोटी छोटी चीज का वर्णन किया है। प्रभुपाद जा रहे तो वहां का वातावरण क्या था, वहां के पंछियां कैसे कर रहे थे, वहां के वृक्ष आदि कैसे थे, तो हमारी कल्पना से परे है ऐसा बहुत अद्भुत वर्णन उन्होंने किया है। बल्कि एक ही ग्रंथ नहीं लिखा उन्होंने अकेले प्रभुपाद के ऊपर लगभग 20 ग्रंथ लिखे हैं। ये तो एक ही बुक हमें लगता है प्रभुपाद लीलामृत। उन्होंने और भी बुक्स लिखे हैं, अलग अलग टाइटल्स हैं, प्रभुपाद मेडिटेशन, परफेक्ट मास्टर, ऐसे कई ग्रंथ लिखे हैं। तो उनमें अलग अलग प्रकार से श्रील प्रभुपाद की महिमा का वर्णन किया है। जिस प्रकार से भगवान के गुण, उनके कार्यकलाप अनंत है, उनको समझना या उनका जितना गुणगान करे उतना कम ही है, उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भक्त हैं, उनके कार्यकलाप भी वैसे ही हैं। कितना अधिक आप शुद्ध भक्त का गुणगान करते जाओगे उतना ही कम है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद वैसे इस परंपरा के किसी आचार्य के बारे में सबसे अधिक लिखा गया है तो वो श्रील प्रभुपाद है। इससे पहले के आचार्य हैं तो हम उनके बारे में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा चीजें हैं, लेकिन इस संप्रदाय के सबसे पहले आचार्य थे श्रील प्रभुपाद, कि जिनके बारे में इतना अधिक लिखा गया है कि किसी आचार्य के बारे में नहीं लिखा गया। और ऐसे आचार्य हैं कि जिनके ऑडियोज रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, परंपरा के आचार्य का वॉइस सुन सकते हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तक नहीं है, वीडियोज हैं, फोटोग्राफ्स हैं। तो ये विशेष देन श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की है। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का सफलता का एकमेव रहस्य है, शुरुआत के समय में जब श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन को शुरू किया तो इतने अधिक ग्रंथ नहीं थे। अभी तो हमें किसी भी टॉपिक पर बोलना है, किसी चीज को समझना है तो कितने सारे ग्रंथ हैं, हम कितना सारा सहायता लेते हैं। लेकिन उस समय शुरुआत के समय में भागवतम का पहला स्कंद था और प्रभुपाद ने एक दो छोटी किताबें लिखी थी, बस उससे परे और कुछ नहीं, सब कुछ वही उतना ही है। फिर भी इन भक्तों की एक खासियत थी कि ये कृष्ण को कम जानते थे लेकिन अधिक किनको जानते थे, प्रभुपाद को। कृष्ण से कम प्रेम था लेकिन अधिक प्रीति या प्रेम श्रील प्रभुपाद से था, और यही एक गुण श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में विशेषतया देखने को मिलता है कि उनका जो आसक्ति है, अनुराग है, अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए बहुत अधिक है। क्योंकि जितना अधिक आध्यात्मिक गुरु के लिए हम आसक्त हो जाते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके उपदेशों के लिए, इंस्ट्रक्शंस आदि के पालन करने के लिए, तो उतना ही वो जो शिष्य है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता है। इसलिए रामानुजाचार्य कहते हैं कि रोज शिष्य को टाइम निकालना चाहिए और रोज अपने आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हुए उसको इस चीज का स्मरण करना चाहिए कि मेरे जो गुरुदेव है वो कितने महिमा मंडित है, उनकी ग्लोरीज को थोड़ा सोचना चाहिए कि इनकी उतनी महिमा है। तो इससे क्या होगा, शिष्य का जो फेथ है या श्रद्धा वो बहुत अधिक आध्यात्मिक गुरु में हो जाएगी और फिर उसको भगवत सेवा करने की शक्ति या साधना करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो जिसका श्रद्धा गुरु और कृष्ण के लिए बलवान है, स्ट्रांग है, उसके लिए आध्यात्मिक रहस्य अपने आप खुल जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद चरित्र और वास्तव में ये अमृत के समान है, इसलिए इसका नाम लीला अमृत है। भगवान के लिए शब्द यूज होता है लीला और भक्तों के लिए भी लीला अमृत। तो अमृत के समान भगवान के भक्तों के कार्यकलाप है, वो भौतिक नहीं है। लीला शब्दों का मतलब ये है कि ऐसे कार्यकलाप जो इस भौतिक प्रकृति से और तीन गुणों के प्रभाव से परे हैं, जिसके जैसे कृष्ण के कार्यकलाप है। बाहरी रूप से तो लगता है कि सर्वसामान्य व्यक्ति का कार्यकलाप और कृष्ण के कार्यकलाप, या सर्वसामान्य स्त्री पुरुष की कार्यकलाप और कृष्ण के कार्यकलाप गोपियों आदि के साथ एक जैसे हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक कार्यकलाप है, इन चीजों से परे है। उसी प्रकार से भगवान के भक्त का जो कार्यकलाप है वो भी वैसे ही है। इसलिए ये अनुभव है सारे भक्तों का कि कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन में बहुत ढिलाई महसूस करता है, ढीला हो जाता है, पूरा उत्साह खत्म हो जाता है, श्रद्धा कम होती जा रही है, भगवत भक्ति में आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है, भक्तों का संग अच्छा नहीं लग रहा है, सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही है, हरि नाम रोते रोते कर रहे हैं कृष्ण के लिए नहीं, हाँ कैसे खत्म हो जाए, मतलब बहुत ये लगता है, परेश टेंशन आता है। तो यदि वो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के चरित्र को पढ़ता है तो वो बहुत अधिक शक्ति अनुभव करता है। हम सबका ये अनुभव है पर्सनली कि जब डिवोटीज बहुत अधिक अपने आध्यात्मिक साधना आदि में निर्बल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रभुपाद के लीलामृत को पढ़ते हैं, और लीलामृत को पढ़कर वो शक्ति महसूस करते हैं। ये पोटेंसी है शुद्ध भक्त के चरित्र को सुनने से या पढ़ने से। तो हमारा भाग्य है परसों हमने मध्वाचार्य का गुणगान किया था, कल रामानुजाचार्य का आराशील प्रभुपाद का गुणगान श्रवण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के बचपन का वर्णन करते हुए सत्स्वरूप दास गोस्वामी लिखते हैं, उन दिनों कोई देहाती चाहे वो निरक्षर ही क्यों ना हो रामायण महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना सकता था। विशेषकर लोग गांव में शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते। इसी उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर जो 10 मील दूर था जाते और वहां एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते। उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते हुए वे वो घर लौटते और रामायण महाभारत भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते। अद्भुत है प्रभुपाद का वर्णन आया है कि ये जो उस समय अच्छा कल्चर था गांव में। आजकल लोग घर आते तो शाम अपना टीवी के सामने बिताते हैं, टीवी को डिवोटीज कहते हैं इडियट बॉक्स या फिर गुरु, वन आए गुरु, कितने आए गुरु, कितने आंखों का गुरु है, वन आए गुरु। तो पूरा परिवार एक साथ कभी मिलता जुलता नहीं है लेकिन शाम के समय जरूर एक साथ बैठते हैं, खाते एक साथ नहीं है, चर्चा एक साथ नहीं करते हैं लेकिन वो जरूर क्या करते हैं, टेलीविजन एक साथ देखते हैं। और वैसे तो आजकल हर कमरे में टेलीविजन हो गए हैं इंडिविजुअल, है कि नहीं, हर एक का अपना अपना गुरु है। तो इस प्रकार से आज का बहुत ही कल्चर है लेकिन श्रील प्रभुपाद के समय में कितना अच्छा अच्छे दिन थे। लोग शाम के समय चाहे वो साक्षर हो या निरक्षर हो सब लोग इतना सामर्थ्य रखते थे कि वो भगवान के बारे में आपको सुना सकते हैं, भगवत कथाओं को सुना सकते हैं। तो ऐसे जो श्रील प्रभुपाद हैं शाम के समय में वो कहते हैं कि कई बार अपने मामा के वहां जाया करते थे अपनी माँ के साथ और श्रीमद् भागवतम महाभारत रामायण आदि को सुनते थे और सुनते सुनते सो जाकर घर आकर उसकी चर्चा होती थी और सो जाते थे तो भगवान के बारे में ही स्वप्न देखते थे। तीसरे प्रहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्राय एक पड़ोसी के घर चले जाते हैं और महाभारत के शाम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते हैं। उनकी दादी उनको बांग्ला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहती, इस प्रकार चित्रों को देख देख कर और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया। तो ये जो पेरेंट्स है माता पिता आदि है उनका एक कर्तव्य है कि उनके पर जो आश्रित है उनको सदैव ये शिक्षा देनी चाहिए और सदैव इस विचार में होना चाहिए कि मुझ पर जो आश्रित लोग हैं उनको कैसे क्या मैं योजना बनाऊं जिसके द्वारा इनको कृष्ण भावना दी जाए। तो उनकी दादी प्रभुपाद ने बचपन में ही इतना अधिक भगवत चर्चा भगवत कथा आदि को सुना, इतना अच्छा एसोसिएशन उनको मिला, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जीवन में कभी ऐसा एक समय नहीं था, एक क्षण नहीं था कि जब मैं कृष्ण को भूला, सदैव बचपन से लेकर कृष्ण का मुझे नित्य स्मरण है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका बचपन में ही भगवान के प्रति अनुराग होता है, जिसमें वो उदाहरण देते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भी ये मौका मिला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा बचपन से ही कृष्ण भक्ति करने का। श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, जब पहले स्कंद में परीक्षित महाराज का वर्णन आया कि परीक्षित महाराज जब छोटे से बालक थे तो उस समय वो कृष्ण बलराम के विग्रह की पूजा करते थे, छोटे छोटे विग्रह बना के उनको भोग अर्पित करते थे, उनको ड्रेसिंग करते थे, उनकी सेवा करते थे और परीक्षित महाराज उनको साथ लेके सो जाया करते थे। तो उसका वर्णन करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि इसी प्रकार से मेरे जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनको भी बचपन से भगवत सेवा करने का मौका मिला, उनको ही नहीं बल्कि मुझे भी वो अवसर अपने पिता के द्वारा प्राप्त हुआ। कैसे? प्रभुपाद कहते थे मैं और मेरी जो बहन है हम सोया करते थे, मेरे पिताजी जल्दी उठकर राधा गोविंद के जो विग्रह हैं घर में वो घंटी बजाते थे, पूजा करते थे, तब उस घंटी की आवाज से हमारे दिन टूटते थे और फिर हम तैयार हो जाते थे और वहां नजदीक के राधा गोविंद मंदिर में हम दर्शन करने के लिए जाया करते थे। आगे लिखते हैं, अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतरिणी प्राय उनका साथ देती, वे साथ साथ मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के अर्च्य विग्रहों का दर्शन करने जाते। अपनी बाल क्रीड़ा में जब कभी उन्हें बाधा होती तब सहायता के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते, पतंग उड़ाने के लिए भागते हुए वे कहते कृष्ण भगवान कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। तो मतलब हर चीज कृष्ण के संबंध में करना, यही कृष्ण भावनामृत है। भगवत भक्ति कोई निष्क्रिय कार्यकलाप नहीं है या फिर निरस नहीं है, अरे कुछ निरस नहीं है, भौतिक कार्यकलापों से बिल्कुल अलिप्त हो जाना है, नहीं। भगवत भक्ति का मतलब ही है कार्य वही करने हैं लेकिन हर कार्य का संबंध कृष्ण से होना चाहिए। चाहे हम स्टूडेंट है, चाहे हम बिजनेसमैन है, चाहे जो मर्जी है, लेकिन हमें उन कार्यों का संबंध कृष्ण से रखना है, यही कृष्ण भावना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बना जप कर करके। अर्जुन कृष्ण का शुद्ध भक्त कैसे बनाए? बने बाण चला चला कर भगवान को प्रसन्न करना, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है भगवान की तुष्टि। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति राजोक्षले। तो भगवान के प्रति भक्ति करना ये मनुष्य का कर्तव्य है और उस भक्ति के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना ये उस कार्यकलापों का उद्देश्य है। तो श्रील प्रभुपाद बचपन में सदैव कृष्ण को कृष्ण की सहायता मांगते थे। अभय के खिलौनों में दो बंदूकें शामिल थी, चाबी एचने से चलने वाली एक कार थी, एक गाय थी जिसमें लगभग रबर बल्ब को दबाने से वो कूदने लगती और एक कुत्ता था जिसमें लगे यंत्र के बल से वो नाचने लगता। कुत्ता और डॉक्टर बोस से प्राप्त हुआ था जो पारिवारिक चिकित्सक थे और जिन्होंने अभय की बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उन्हें दिया था। कभी कभी अभय डॉक्टर होने का नाटक करते और अपने मित्रों को दवा देते जो धूली के अतिरिक्त कुछ न थे, बच्चे जो खेल खेलते हैं। कलकत्ता में प्रतिवर्ष होने वाले जगन्नाथ जी के रथ यात्रा समारोह के पीछे अभय मुग्ध थे। मल्लिक की कलकत्ता रथ यात्रा सबसे विशाल थी होती, जिसमें तीन अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा जी के विग्रह ले जाए जाते। राधा गोविंद मंदिर से आरम्भ करके रथ हरिसन रोड पर थोड़ी दूर जाते और फिर वापस आ जाते। मल्लिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करते। रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूल और विशाल रथ यात्रा जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते हैं, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथपुरी में होती थी। भगवान कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे तीन काट के रथ जनसमूह द्वारा 2 मील की यात्रा पर शताब्दियों से खींचे जाते रहे हैं। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व होते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बचपन से ही एक चीज से मुग्ध रहते थे और वो है जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद ही ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने जगन्नाथ जी की महिमा को पूरे विश्व में फैलाया। जगन्नाथ जी को जगत के नाथ तो कहा जाता है लेकिन सारा जगत उनकी पूजा नहीं करता या नहीं जानता था। लेकिन वास्तव में एक एक दृष्टि से हम देखें तो भगवान जगन्नाथ को ये जगन्नाथ टाइटल का क्या कहते हैं उचित हुआ जब प्रभुपाद ने उनको पूरे विश्व में फैलाया। कभी कभी अब हम रेलवे टाइम टेबल देखते हैं या वृंदावन और जगन्नाथपुरी का किराया पूछते हैं, वे यही सोचते रहते हैं कि किस तरह उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हो और वे इस स्थानों में जा सके। तो बचपन से ही श्रील प्रभुपाद को बहुत अधिक गहरा अनुराग था किस चीज के लिए, जगन्नाथपुरी के लिए और वृंदावन के लिए। तो प्रभुपाद रथ यात्रा के लिए बहुत अधिक उत्साहित रहते थे और हम जानते हैं कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए। अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने न्यूयॉर्क में पहला छोटा सा मंदिर शुरू किया, उसमें कोई विग्रह नहीं थे। लेकिन एक दिन श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को गए वहां पहली बार, और पहली बार विमान में बैठे थे। तो प्रभुपाद जब उतरे तो विमान से उतरने के बाद उन्होंने कहा कि नीचे की सारी जो वस्तुएं हैं, जो घर आदि हैं, वो मैच बॉक्स के समान लगते थे मुझे। ये उनका पहला ये था रियलाइजेशन था विमान में बैठने के बाद। और जब सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो वहां कई उनके जो शिष्य हैं, मालती देवी, श्याम सुंदर, गुरुदास, यमुना, ये गुरुदास और यमुना ये प्रमुख वहां भक्त थे। और फिर श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, ऐसे भक्तों से बातें कर रहे थे तो इन भक्तों को आनंद आता था कि कुछ ना कुछ हम स्वामी जी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आ जाएं, है ना। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनको कुछ ना कुछ हम गिफ्ट देते हैं। तो ये सारे जो शिष्य थे उस समय प्रभुपाद तो नहीं कहते थे उनको, सब स्वामी जी कह के पुकारते थे। और प्रभुपाद उन सबके लिए स्वयं सारी चीजें करते थे, उनके लिए कुकिंग करते थे, उनके लिए बहुत सारी सेवाएं करते थे। तो एक दिन क्योंकि इन सबका धीरे धीरे स्वामी जी के प्रति प्रेम होने लगा, सबको इतना प्रेम हो गया नया नया, और ये सोचते थे कि स्वामी जी इंडिया से हैं तो कुछ ना कुछ ले जाते थे। तो ये जो मालती देवी है, ये जो माता जी, क्या ये एक दिन इंडियन स्टोर में गई, इंडियन स्टोर होता है इंडियन स्टोर हाउस, तो वहां उस दुकान में गए तो वहां बहुत सारी वस्तुएं उन्होंने देखी जो भारत से वहां सेल करने के लिए थी। तो बहुत सारी वस्तुएं वहां भारत की थी सेल करने के लिए, तो वो ढूंढ रहे थे कि क्या चीज मैं स्वामी जी के लिए ले जाऊं। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते उन्होंने सोचा ये भगवान की विशेष योजना थी, अभी कुछ और भी तो ले जा सकते थे प्रभुपाद के लिए। लेकिन वो क्या ले गए, वहां कई सारे डॉल्स होते ना खिलौने, एक प्रकार से वो डॉल्स रखे थे या मूर्ति थी छोटी सी, उसमें से तीन होंगे वहां। एक को उठाया उन्होंने, जगन्नाथ जी को उठाया, एक एक विग्रह को उसको ले गए। प्रभुपाद बैठे थे एक दो भक्तों के साथ अपने रूम में, कहा कि स्वामी जी मैंने आपके लिए बहुत अच्छी भेंट लेके आई हूँ, गिफ्ट लाई हूँ। उन्होंने कहा क्या है, तो उन्होंने अपने उस बैग से निकाला, ऐसे पकड़ा। प्रभुपाद देखते जय जगन्नाथ कहते हुए अपने छोटा सा चेयर या नीचे बैठे थे वहां से उठे और तुरंत प्रणाम कर दिया प्रभुपाद ने। अभी इन सब भक्तों को लगा ये क्या है, ये मालती देवी दास तो चकित हो गई कि मैं तो इनके लिए कुछ डॉल लेके आई हुई गिफ्ट, उनको क्या पता ये भगवान है भगवान के विग्रह है। ये जब उन्होंने लाया और प्रभुपाद को देखा कि लंबा प्रणाम कर रहे, प्रणाम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, प्रभुपाद ने पूछा कि क्या ये अकेले थे, इनके साथ दो और होने चाहिए। प्रभुपाद इन्होंने कहा दो और थे वहां, मैं एक ही ले आए हूं अपने साथ। तो प्रभुपाद ने कहा क्या तुम और उन दोनों को ला सकती हो। तो मालती देवी तुरंत जाती है उस स्टोर हाउस में, देखा अभी भी वहां दो और बच्चे थे वहां, एक थे सुभद्रा देवी और दूसरे थे बलदेव। तो वो उनको लेके आती हैं और श्रील प्रभुपाद तब उनको बताते हैं कि वास्तव में ये कौन है। हाँ, ये जगन्नाथ देव है, सारे जगत के नाथ है, और उनकी बहन ये सुभद्रा है, और उनके जो भाई है ये बलराम है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने पहली बार विदेशों में इंट्रोड्यूस किया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, और उनको कहा कि ये कलियुगा के विग्रह है जो सब जगह अपनी कृपा प्रदान करने के लिए निकलते हैं बाहर। फिर प्रभुपाद ने कहा कि भारत में एक ऐसा धाम है जहाँ भगवान इस रूप में निवास करते हैं और सारी सेवाओं को स्वीकारते हैं, और साल में एक बार बाहर निकलते हैं भ्रमण करने के लिए, रथ यात्रा। तो प्रभुपाद ने कहा, उनको पूछा, आप में से कोई है जो इसका इसके समान ही बड़ा मूर्ति बना सके? तो उस मालती देवी दासी के जो हस्बैंड थे श्याम सुंदर प्रभु, वो कारपेंटर का काम जानते थे। उन्होंने कहा, प्रभुपाद मैं बना सकता हूँ, जगन्नाथ की कितनी व्यवस्था है, सारी चीजें वहीं है, पत्नी लेके आई और पति कारपेंटर का सेवा जानता था। प्रभुपाद ने कहा, तुम बना सकते हो, इतने हेड के बनाओ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। उन्होंने कहा, यस प्रभुपाद। तो वो तो सिगरेट पीते थे और सब कुछ करते थे, अभी तो भक्त नहीं बने थे, तो उनको ये आदत थी। तो प्रभुपाद ने लेकिन सेवा में लगाया, सेवा में लगाने से क्या होता है, शुद्धि हो जाती है धीरे 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 धीरे, क्योंकि भक्तों का संग बढ़ता है और सेवा करने से शुद्धि बढ़ती है। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप ये विग्रह बनाना शुरू करो। तो उन्होंने शुरू किए एक रूम में। प्रभुपाद बीच बीच में जाते थे, प्रभुपाद एक दिन गए कि अभी कहाँ तक काम हुआ है, तो देखा कि वो बलराम का विग्रह थोड़ा सा बना था, दूसरा वो बना रहे थे और सिगरेट पी के बलराम जी का जो विग्रह है उसके ऊपर रखते थे। प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद ने डांट नहीं सकते, नया नया है, थोड़ा सा कहा कि ये उचित नहीं है, आप सिगरेट हम होते तो पता नहीं क्या कर देते वहां, लेकिन प्रभुपाद जानते हैं इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि ये उचित नहीं है, ये साक्षात भगवान है, आप सिगरेट पीना है तो बाहर जाओ, लेकिन यहाँ ये मत करो। तो वो समझ गए धीरे धीरे, और इस प्रकार से प्रभुपाद ने वहाँ के भक्तों को जो म्लेच्छ है यवन है उनको भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगाया। और जगन्नाथ अब फेमस है किस चीज के लिए, जो नीच लोग हैं उनके ऊपर भी अपनी कृपा प्रदान करने के लिए जगन्नाथ जी फेमस हैं। तो फिर आगे चल के प्रभुपाद एक बार बहुत बीमार हो गए, तो भक्तों ने उनके लिए एक समंदर के किनारे एक स्थान, एक एक कोठी लिया जहाँ प्रभुपाद रहा करते थे, एक दो भक्त उनकी सेवा करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का आविर्भाव हो गया है और वो इस अमेरिका के या सैन फ्रांसिस्को के इस सड़कों में निकलना चाहते हैं, क्या आप लोग रथ यात्रा का आयोजन कर सकते हैं? अभी इनको तो कुछ पता नहीं कैसे रथ यात्रा होता है, क्या होता है। प्रभुपाद ने कहा इनको बड़े किसी इसमें रखो, रथ के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, उसको खींचते हुए ले जाओ कुछ किलोमीटर, और साथ साथ प्रसाद वितरण होना चाहिए। तब इन भक्तों के आइडिया दिया कि श्याम सुंदर प्रभु और ये दो तीन बड़े एक्सपर्ट थे, इन्होंने एक ट्रक हायर किया, ट्रक का पिछला भाग है ना खाली कर दिया फ्लैट, उसके ऊपर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रखा, और वहां उनका तो कुत्ता भी रहता था, श्याम सुंदर जो थे उनके साथ अपना कुत्ता भी हुआ करता था। फिर अभी प्रसाद बांटना है तो सबको लगा कि ये जो इंडियन प्रसाद है वो बहुत अच्छा है। उस दिन ये सारी माताएं जो थी उन्होंने कई हजार चपातियां बना ली, प्रसाद क्या बांट रहे थे सब लोग, चपाती, सूखी चपाती बांट रहे थे, और कुछ हिप्पीज थे क्योंकि उस समय हिप्पीज वगैरह थे, हाँ, शराब, एलएसडी, गांजा, अफीम इन सब का सेवन करते थे। तो कुछ जो हिप्पीज थे वो प्रसाद के रूप में गांजा बांटते थे, अफीम बांट रहे थे, एलएसडी बांट रहे थे, तो ये सब हो रहा था। लेकिन देखा एक आश्चर्य की बात थी, कीर्तन हो रहा था और दूसरा हजारों लोग भाग ले रहे थे और कोई ट्रबल नहीं, हल्ला कुछ ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक चीज थी कि जैसे भगवान निकले हजारों लोग उस पहली यात्रा में भाग लिए और कैसे तो फिर समंदर के तट पर ले जाया गया और वहां समापन भी हुआ, फिर वहां थोड़ा प्रसाद और बांटा। तो प्रभुपाद को ये न्यूज दी तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा आप जिन्होंने इस रथ यात्रा का आयोजन किया है उनके ऊपर जगन्नाथ की जो महती कृपा है वो जरूर होगी। तो इस प्रकार से शुरुआत के दिन बहुत अद्भुत है और श्रील प्रभुपाद बचपन से ही भगवान जगन्नाथ के प्रति, जगन्नाथ रथ यात्रा के प्रति आसक्त थे। तो बचपन से ही कोई बालक थोड़ी ये सोच सकता है कि कहाँ जगन्नाथपुरी मुझे जाना है, कहा वृंदावन मुझे जाना है। हाँ, लेकिन क्योंकि वो उनका नित्य स्थान है, शुद्ध भक्त का नित्य निवास भगवान के धाम में होता है। तो प्रभुपाद बचपन से कलकत्ता के रेलवे स्टेशन में देखते थे, टाइम टेबल देखते थे, पैसे इकट्ठा करते थे कि हाँ एक दिन आएगा इतना किराया हो जाएगा मेरे पास तो मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो और वे अपने रथ यात्रा निकाल सके, बचपन से ही इच्छा थी अपना रथ और अपने रथ यात्रा। अभी कितने रथ है प्रभुपाद के गिन नहीं सकते, दिल्ली में तो पता नहीं हर महीने लाख रथ यात्रा निकलती रहती है, इतनी रथ यात्रा है पूरे भारत में, बहुत अधिक रथ यात्रा भारत में, पूरे विश्व में बहुत 108 से भी अधिक रथ यात्राएं होती हैं। कई स्थानों में जहां टेंपल नहीं है, सेंटर नहीं है, प्रचार नहीं है, लेकिन वहां एक चीज है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और भगवान जगन्नाथ है। तो सहायता के लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा, गौर मोहन राजी हो गए, लेकिन इसमें कठिनाइयां थी। जब वे अभय को कोई बढ़ैया की दुकानों पर ले गए तो उन्होंने पाया कि रथ बनवाना उनके सामर्थ्य की बात नहीं थी, तो इतना अधिक धन नहीं था उनके पिता के पास, लेकिन पुत्र की इच्छा थी कि हमारे पास हमारा अपना रथ होना चाहिए। जब वे घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे और एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास गई और उसने पूछा कि क्या बात है। गौर मोहन ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है लेकिन उसे बनवाना उनके लिए संभव नहीं है। ओ, मेरे पास एक रथ है, महिला ने कहा और उन्हें अपने घर आमंत्रित करके उसने रथ दिखाया। रथ पुराना लगता था लेकिन फिर भी काम चलाओ था और उसका आकार भी ठीक था, लगभग 3 फुट ऊंचा। गौर मोहन ने उसे खरीद लिया और उसकी मरम्मत करा के उसे सजाने में सहायता की। पिता पुत्र ने मिलकर उस पर सहारे के लिए 16 खंभे बनाए और उनके ऊपर वितान तान दिया, जो पुरी के बड़े रथों पर लगे वितानों के लगभग मिलता हुआ था। रथ के आगे उन्होंने परंपरागत काठ का घोड़ा और उसका चालक भी लगा दिया। अभय का आग्रह था कि रथ असली लगना चाहिए, सेवा करनी है भगवान की थोड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, है कि पूरा प्रयास पूरा सामर्थ्य लगाए। तो प्रभुपाद का इच्छा था कि जगन्नाथपुरी में 3 जो विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तीनों के लिए इंडिविजुअल स्वतंत्र रथ है। सबसे पहले जब रथ यात्रा शुरू होती है तो भगवान बलराम सबसे पहले निकलते हैं, फिर उनके बाद सुभद्रा और फाइनली भगवान जो कृष्ण है उनके रथ का नाम नंदी घोष है, वो आखिरी में निकलते हैं। तो इस प्रकार से इनको लगा कि मेरा जो रथ है, क्योंकि हर रथ के ऊपर जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में रथ के ऊपर एक सारथी होता है, लकड़ का ही बना हुआ सारथी होता है, जैसे कृष्ण के रथ पर ऊपर दारुक है वहां और सुभद्रा के रथ पर अर्जुन होते हैं, बलराम के रथ पर मुझे याद नहीं कौन होते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने भी उसी प्रकार से किया जैसे जगन्नाथपुरी में था। गौर मोहन रथ ले आए और अभय ने रथ को पुरी के मूल रथों का अनुकरण करते हुए स्वयं पैक किया। उनमें बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों की व्यवस्था उन्होंने बड़ी लगन से की, लेकिन जब उन्होंने पुस्तक में दिए गए चित्रों और विधियों को क्रियान्वित करते हुए यात्रा के लिए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया तो रजनी ने मना कर दिया। प्रभुपाद के माता का नाम क्या था? रजनी। अभय ने अपने साथियों से सहायता ली, विशेषकर अपनी बहन भवतारिणी, और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनके बाल क्रीड़ा से प्रसन्न पड़ोस की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई, ताकि वे अपने रथ यात्रा समारोह में प्रसाद बांट सके। मतलब भगवान की सेवा इन्होंने शुरू की तो सारी सुविधाएं, इच्छा की केवल कि जगन्नाथ का एक रथ होना चाहिए, जगन्नाथ की सेवा होनी चाहिए, उनको मैं निकल कर ले जाऊं। तो इतनी बलवान इच्छा थी कि भगवान ने एक बंगाली वृद्ध स्त्री को अरेंज किया, उसने रथ डोनेट किया। फिर इनके सारे मित्र आदि मिले, विशेष रूप से उनकी बहन प्रभुपाद यहाँ कहा है कि स्वाभाविक नेता बन गए छोटे से ग्रुप के। प्रभुपाद कहते हैं एक एक लेक्चर में, वो कहते हैं कि बचपन से ही मैं हमेशा लीडर था और आज तक समय तक लीडर ही है, लेकिन अभी तो पूरे विश्व के नेता है, लीडर है। तो प्रभुपाद ने रथ यात्रा समारोह शुरू किया, और फिर पड़ोस की जो स्त्रियां हैं वृद्ध महिला, उन्होंने देखा अरे बच्चे रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम प्रसाद बनाएंगे, बांटने के लिए प्रसाद बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति सिंसियरली भगवत सेवा करने की इच्छा करता है तो भगवान सारी चीजें अरेंज करते हैं। हम खुद प्रभुपाद के जीवन से देखते हैं, उन्होंने तो इच्छा की कि मेरे गुरु के आदेशों का पालन करना है, मुझे कृष्ण भावना का प्रचार करके, तो सारी चीजें भगवान ने अरेंज कर दी। उनके लिए जलदूत की व्यवस्था, वहां भक्त भेजे, वहां ग्रंथ, मंदिर, धन, कॉन्टैक्ट, सब चीजें। तो यही एक चीज है, भगवान की सेवा करने के लिए सबसे पहले उनकी सेवा करने की इच्छा हमारे हृदय में होनी चाहिए, सिंसियर इच्छा। तो जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त सिंसियरली इच्छुक है मेरे सेवा करने के लिए, तो भगवान फिर अपनी सेवा के लिए सारे व्यवस्था उस भक्त को प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन चलती। उनके परिवार के लोग जमा होते और पड़ोस के बच्चे यात्रा में शामिल होते, रथ खींचते, ढोल और करतल बजाते तथा कीर्तन करते। ग्रीष्म की गर्मी में बिना कुर्ता कमीज के केवल धोती पहने अभय हरे कृष्ण और समयोक्त बंगाली भजन की कर राई कमलिनी गाने में बच्चों का मार्गदर्शन करते। तो इनकी बिल्कुल जैसे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है, उसी प्रकार का रथ यात्रा ये अपने घर में मनाते थे। 8 दिन भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दिन यहाँ निवास करते हैं नीलाचल। भगवान जगन्नाथ जी जिस मंदिर में रहते हैं उसको नीलाचल कहा जाता है, और भगवान जगन्नाथ चल के जहाँ जाते हैं उसको सुंदराचल कहते हैं। नीलाचल जो मंदिर है वो द्वारका का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ जगन्नाथ रहते हैं, और द्वारका से भगवान जहाँ आखिरी मंदिर जाते हैं उसको वृंदावन कहा जाता है। उस मंदिर का नाम गुंडीचा है, या फिर दूसरा नाम मौसीमा मंदिर कहते हैं लोकल लोग, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा ने जब भगवान से प्रार्थना की थी और उनको पुत्र नहीं चाहिए था, तो भगवान ने कहा मैं आपका पुत्र बन के आपके घर आया करूंगा। तो भगवान हर साल लगभग 8 दिनों के लिए, 7 या 8 दिनों के लिए गुंडीचा मंदिर में जाकर निवास करते हैं जगन्नाथ मंदिर से, क्योंकि रथ यात्रा की ये भावना है। गोपियों ने जब कृष्ण वृंदावन को छोड़कर, जब 11 साल के थे वृंदावन को छोड़कर चले गए, 10 साल 7-8 महीने के थे कृष्ण, तो उस समय मथुरा चले गए अक्रूर के साथ, और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण गोपिकाओं से, ब्रजवासियों से मिले नहीं, आए नहीं मिलने। उन्होंने क्या किया, इतना अधिक भगवान मथुरा में असंतुष्ट थे, असंतोष था उनके हृदय में, बहुत दुखी थे। कृष्ण से अधिक दुखी कोई नहीं था, क्यों? क्योंकि उनको अपने प्रेमी भक्तों से विलग होना पड़ गया था। तो मथुरा में हमेशा कृष्ण चिंतित रहते थे, तो फिर उन्होंने एक दिन इनको भेजा, उद्धव को भेजा, अलग अलग भक्तों को भेजते थे, वृंदावन अपने भक्तों की उनको सहानुभूति प्रदान करने के लिए। फिर लेकिन जब सूर्य ग्रहण का समय आया तो उस समय कृष्ण अपने सारे द्वारका से रानियों के साथ देवकी वसुदेव आदि के साथ कृष्ण चले गए कहां कुरुक्षेत्र। वहां गए, वहां हस्तिनापुर से पांडव बहुत सारे राजागण आए थे, वहां ब्रह्म सरोवर है उसमें स्नान करने के लिए, सूर्य ग्रहण में वहां स्नान करना और दान देना बहुत लाभदायक माना जाता है। कुरुक्षेत्र भूमि जो राजा कुरु के कार्यों से उसका नाम पड़ा था। और फिर वहां भगवान जब अपने टेंट में थे तो बहुत सारे ऋषि मुनि उनको मिलने आते थे, राजागण आते थे, क्योंकि भगवान ने राज वस्त्र धारण किए थे राजा के समान। फिर किसी ने कहा कि हे कृष्ण, वृंदावन वासी आए हैं आपको मिलने के लिए इतने दूर से, और वो कैसे आए थे वृंदावन वासी, बैलगाड़ियों में, पूरे वृंदावन के भक्त गोपिकाएं ग्वाल बाल नंद महाराज यशोदा ये सारे भक्त आए थे। और वहां फिर भगवान को जैसे पता चला तो भगवान ने अपने टेंट से वो बाहर निकले, सबको छोड़ दिया और दौड़ पड़े। दौड़े तो उन्होंने देखा कि नंद महाराज और यशोदा वहां से आ रही हैं। भगवान ने उनका आलिंगन किया, यशोदा नंद आदि देखकर उनको आलिंगन करके रोने लगे। और फिर गोपिकाएं एक कोने में खड़ी थी सारी। अभी गोपिकाएं ये सीनियर लोगों के बीच में कृष्ण से तो नहीं मिल सकती, लेकिन उन्होंने अपने आंखों के द्वारा कृष्ण को अपने हृदय में डाल दिया और इंतजार करने लगी एक साइड में कि कब कृष्ण फ्री हो जाएंगे और हम उनको मिलेंगे। तो जैसे कृष्ण थोड़े से फ्री हो गए तो गोपिकाएं आई उनके पास और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि आप रथ पर बैठिए, क्योंकि गोपिकाओं को कृष्ण को इस वेशभूषा में देखना अच्छा नहीं लगता था, राजा के वेश में उनको आनंद किस वेश में होता है देखकर, त्रिभंग लीन मोर पंख धारण किया है, पुष्पों की माला है, सर्वसाधारण वस्त्र उन्होंने धारण किया है, वेलो उनके हाथ में है, ये वृंदावन वेश देखकर गोपिकाओं को आनंद होता है। तो गोपिकाओं ने कहा कि ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपको तो हम वहां देखना चाहती हैं यमुना के तट पर जहां आप भ्रमण करते हो और दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हो। तो उन सबने उनको रथ के ऊपर बिठाया और रथ के ऊपर बिठाकर उनको खींचने लगे कि चलिए आप यहां से ब्रज भूमि चलिए। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वृंदावन या रथ यात्रा का अर्थ क्या है, कृष्ण लैया ब्रजे जावो ये भावांतर है। कृष्ण को लेकर वृंदावन ले जाना, कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाना, ये भावना अंदर होनी चाहिए, उसी को रथ यात्रा कहते हैं। इस प्रकार से ये जो रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी में होती है और भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, मतलब भगवान द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं, ये भावना है रथ यात्रा के पीछे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ये रथ यात्रा मनाते थे अपने स्थान में और रथ यात्रा के बीच में सदैव कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद दिनांक के एकादशी महामहोत्सव के